الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں اس کلاس میں، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے. اور جب یہ آیات تلاوت کی گئیں وہ آیات نمبر 94 اور 95 ہیں سورہ بنی اسرائیل کی. ان کے ہم معرف مسائل پہلے سے ہی پڑھ رہے تھے، تو اب جو پیج نمبر 533 533 ہے آپ کے سامنے، اسکرین کے اوپر بھی شیئر ہوا، تو اس کے بالکل آخری پیراگراف کو ہم نے پڑھنا تھا، جو کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخر آیت میں یہ ارشاد فرمایا، یعنی پیچھے جو چل رہا تھا کہ بھئی یہ اس قسم کے بے سروپا اور دشمنانہ سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی سر نہیں ہوتا نہ کوئی پیر ہوتا ہے، یعنی بے تکے سوالات جن کی کوئی ریلیونس نہیں ہوتی، معاملے سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بھائی سیدھا سا معاملہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ جو ہدایت تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، نبیوں نے پہلے ہی تمہیں بتایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اور جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یہ سب جو ہے وہ انسانوں کے پاس پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کے آ چکے تھے. اب جو ہے تم نے اس کو بھلا دیا، یا اس کو تم نے خراب کر دیا، مسخ کر دیا تم نے اس کو. اب جو ہے وہ ایک اور نبی آیا ہے، وہ وہی باتیں تمہیں دوبارہ سے بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو تم ظلم کر رہے ہو کہ کسی کو کسی کا حق نہیں دیتے ہو، رائٹ، نہ اللہ کو اس کا حق دیتے ہو نہ جو ہے وہ انسانوں کو اس کا حق دیتے ہو، تو تم ختم کرو بس یہ سارے کام اور حق ادا کرنا شروع کر دو، بس ختم بات. اتنی سی بات ہے جو کہ ہر نبی لے کر کے آئے ہوئے ہیں. اب تم جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ جس بات کو تمہارا ضمیر بھی جانتا ہے اور تم اس کو صحیح سمجھتے بھی ہو، لیکن تم مان کے نہیں دے رہے اس بات کو، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا تم بے تکے سوالات، ادھر ادھر کی باتیں، یہاں کی تک ادھر کی بے تکی، الٹے سیدھے ارریلیونٹ قسم کی باتیں جو تم لے کر کے آئے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا، تو ان کی کیا تو کیا 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 ضرورت ہے ان سب باتوں کی نا. خام خواہ کا بس وہ آج کل یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں سر کھانا، ٹھیک ہے نا، ہیڈ ایٹنگ، خام خواہ کے ہیڈ ایٹنگ کرتے رہتے ہو، سر کھاتے رہتے ہو بس، ٹھیک ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، ایسا کر دیں ویسا کر دیں، یہ لا دیں وہ لا دیں وغیرہ، جس ٹھیک. تو اب آخر آیت میں یہی بات آگے چل رہی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تم انسان ہونے کے باوجود جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارا رسول فرشتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مشرقین مکہ فرشتے کا مطالبہ کرتے تھے، اور یہود یہ جو ہے وہ اسرائیلی رسول کا مطالبہ کرتے تھے، رائٹ، کہ یہ اسماعیلی رسول کہاں سے آ گیا. اسماعیلی رسول یہ وہ والا اسماعیلی نہیں جو آغا خانی لوگ ہوتے ہیں، نہیں، ان کو بھی تو اسماعیلی کہتے ہیں نا، نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول کہاں سے آ گیا، یہ تو اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو یہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے مکہ مکرمہ کے مشرقین، اور وہ جو ہے وہ ایسے مطالبے کرتے تھے ہماری نسل میں سے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو یہ مطالبہ تو نامعقول ہے، فرشتوں کا مطالبہ کرنا تو نامعقول، بالکل عقل ہی نہیں، عقل کی بات ہی نہیں ہے. تو البتہ اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے और उनकी तरफ रसूल भेजने की जरूरत होती। ठीक है, यानी फरिश्तों को तो रसूल की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि उनके पास तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया ही नहीं कि अच्छे और बुरे में से तुम इख्तियार कर लो, वो तो खालिसतन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन बिलफर्ज, बिलफर्ज अगर उनको वो भी गुमराह हो जाते, वो भी जो है ना, वो उनके पास भी इख्तियार अगर होता, अगर की बात हो रही है, बिलफर्ज तो उनके पास अगर रसूल भेजने की जरूरत होती है ना, कि उन्होंने भी बुरे काम करने शुरू कर दिए, तो फरिश्ते ही को रसूल बना के भेजा जाता। ठीक है, इसमें जो जमीन पर बसने वाले फरिश्तों का ये वस्फ जिक्र किया गया। अब आगे हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो इस आयत के अंदर ये जो फरमाया ना कि यमशूना मुतमइनीना, ठीक है, कि ये चलते हैं इत्मीनान के साथ। ठीक है, चलते नहीं है, अगर चलते इत्मीनान के साथ। ठीक है, तो अब ये इत्मीनान के साथ क्यों फरमाया? ठीक है, तो वो फरमा रहे हैं कि ये जमीन पर बसने वाले फरिश्तों का जो ये वस्फ जिक्र किया गया है कि यमशूना मुतमइनीन, यानी वो फरिश्ते जमीन पर मुतमइन होकर चलते फिरते, इससे मालूम हुआ कि फरिश्तों की तरफ फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजने की जरूरत उसी वक्त हो सकती थी जबकि जमीन के फरिश्ते खुद आसमान पर ना जा सकते, बल्कि जमीन ही पर चलते फिरते रहते। वरना अगर वो खुद आसमान पर जाने की कुदरत रखते तो जमीन पर रसूल भेजने की जरूरत ही ना रहती। ठीक है, तो अब इसके अंदर कई बातें। एक बात क्या कि इत्मीनान का मतलब क्या होता है, यमशून मुतमइनीन। ठीक है, ये फरमाया ना कि अगर वो यानी फरिश्तों को हिदायत की जरूरत होती और फरिश्ते जो है वो जमीन पर मुतमइन होकर के रहते, मुतमइन होकर के मतलब यहां पर मुतमइन होने का मतलब क्या है, दिली इत्मीनान नहीं, बल्कि जो उनका रहने का तरीका होता ना जमीन के ऊपर, वो ऐसे होता कि वो जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं चैन से रहते, कहते हैं ना जरा चैन से बैठो, चैन समझते हैं ना सब, चैन से बैठो, यानी तुम क्या हर वक्त जो है ना वो बेचैन होकर के कभी इधर कभी उधर कभी बाहर कभी अंदर कभी फलानी जगह कभी फलानी जगह, अल्लाह के बंदे चैन से बैठो, हम उर्दू में कहते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर इत्मीनान का मतलब ये है कि वो जमीन में ही रहते, जमीन में ही चैन से रहते, ना ये कि कभी जमीन में कभी आसमान में, कभी जमीन में कभी आसमान में। ठीक है, तो अगर चैन से सिर्फ जमीन में ही रहते होते ना, ठीक है, तो फिर हम जमीन में जो है वो फरिश्ते भेज देते हैं उनके लिए अगर उनको जरूरत पड़ती है, यानी बहुत सारे अगर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों कर रहे हैं, उन लोगों की बेतुके सवालात की वजह से। यानी एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज है, जो चीज है ही नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही नहीं है, लेकिन कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत तहम्मुल के साथ कुफार यानी इनकार करने वालों, दुश्मनों का सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कितना तहम्मुल के साथ उनके मसलों का जवाब दे रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फिर एक तो हमने इत्मीनान का मानी सीखा कि इत्मीनान का मतलब क्या होता है, चैन से बैठो, सुकून से बैठो, हर वक्त फुदकते ना रहा करो। कहते हैं ना, वो आपके बच्चे भी होते होंगे, वो हर वक्त अगर फुदकते रहते हैं, कभी इधर छलांगे मार रहे हैं, कभी उधर बिस्तर पे कूद रहे हैं, कभी उधर जो है वो चीजों को तोड़ रहे हैं, तो आप कहती हैं ना बच्चों को जरा चैन से बैठो, फुदकते मत रहा करो हर वक्त। ठीक है, तो इत्मीनान का मतलब ये होता है चैन से बैठना। ठीक है भाई, खेल के वक्त खेल, उस वक्त आप उछल कूद कर लें, लेकिन अदरवाइज तो घर में चैन से बैठे ना। ये तमीज शरीफ इन लोगों के घरों के अंदर ये माहौल होता है कि चैन से बैठते हैं, खेल के वक्त खेल खेलते हैं, अदरवाइज उठा पटख नहीं करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ माएं जो है ना वो जरा वो हो जाती हैं, बिल्कुल तंग आ जाती हैं ना, तो कहती हैं करो जो करना है तुम्हें, मैं अपना काम करती रहूंगी, या मैं अपना जो है वो बातें करती रहूंगी, या मैं जो भी करती रहूंगी, तुम तोड़ो फोड़ो, खुद को छलांगे मारो, तोड़ो, जो भी करना है करो, किसी दूसरे का सर खाओ, पड़ोसी के बच्चों को जाकर के अजियत देना शुरू कर दो, आई डोंट केयर। तो ये अच्छी माँ नहीं होती है, ठीक है? तो अच्छी माँ वो होती है जो कि बच्चों को संभाल के रखती है, उनको जो है ना वो चैन से बिठाना सिखाती है, ठीक है? उनसे बातें करती है, उनको लोरियां भी सुनाती है, उनको अच्छी चीजें भी सिखाती है, ठीक है? ये नहीं कि बस हवाले कर दिया, बस जो चाहो करो तुम, अपने हवाले से निकाल करके किसी दूसरे के हवाले कर दिया। तो इत्मीनान का मतलब ये होता है चैन से बैठना, ठीक है? और दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तहम्मुल देखे, ठीक है? तो वो है ना कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो क्या है वो, अल्लाह ताला के औसाफ से अपने आप को मुजय्यन करने की कोशिश करो, ठीक है? यानी अल्लाह ताला के जो अखलाक हैं, तखल्लकु बे अखलाकिल्ला, अपने आप को अल्लाह ताला के अखलाक से मुजय्यन करो, तखल्लकु, ठीक है? यानी ऐसे अखलाक पैदा करो जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अखलाक हैं, ठीक है? खुदा मत बन जाओ, ये खुदा बनना ये अखलाक में नहीं आता, ठीक है? तो खुदा बनने की कोशिश मत करना, लेकिन तहम्मुल एक अच्छा वस्फ है, इस वस्फ को तो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो ऐसे मुशरिकीन के उल्टे सीधे वो पटान किस्म के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या, और फिर तीसरी बात, ये तो दूसरी बात हो गई, तीसरी बात क्या कि फरमा रहे हैं कि अगर जमीन के फरिश्ते खुद आसमान पर नहीं जा सकते बल्कि जमीन ही पर चलते फिरते रहते, ठीक है, तो जमीन पर रसूल भेजने की जरूरत ही ना रहती, जमीन पर रसूल भेजने की जरूरत ही ना रहती। क्या मतलब? कि अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जरूरत को पूरा फरमाते हैं, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जरूरत को पूरा फरमा देते हैं, लेकिन जब जरूरत होती ही नहीं, किसी चीज की जरूरत होती ही नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा नहीं फरमाते क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, उम्मीद है कि आप कुछ लिख रही होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरार करने वालियां तो माशाल्लाह लिखती हैं, क्योंकि फिर तकरार तकरार सेशन के अंदर उनको आपस में डिस्कस करती हैं और बाकायदा नोट्स बनाती हैं, लेकिन बाकी हों जिनको तकरार की जरूरत नहीं होती है तो वो इधर ही कम अज कम लिख लें, ठीक है? जरूरत तो हर एक को है, लेकिन मानने वाले होते हैं ना, कुछ मानती हैं कुछ नहीं मानती, यही फर्क है ईमान वालों में और काफिरों में भी, यही तो फर्क है। पता तो सबको है कि क्या चीज अच्छी होती है क्या चीज बुरी होती है, लेकिन वो मानने वाले होते हैं कामयाब हो जाते हैं, और वो नहीं मानने वाले होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। उसी तरह से तकरार का भी मामला ऐसा ही है, कुछ मानती हैं कुछ नहीं मानती, ठीक है? अल्लाह मानने वालों में से बना दे हमें, तो ज्यादा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल, तो नोट्स तो फिर भी बना लेने चाहिए कि जरूरत, ठीक है? अब जरूरत का मसला पहले भी हम कई दफा लंबा लंबा इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट इज जरूरत, ठीक है ना? तो वो तो फिर हमने किया था कि भाई हर एक की अलग अलग जरूरत होती है, गांव में रहने वाले की जरूरत अलग होती है, शहर में रहने वाले की जरूरत अलग होती है, हत्ता के शहर में ही रहने वालों में मुख्तलिफ लोग होते हैं उनकी अलग अलग जरूरियात होती हैं, हत्ता के एक ही घर के अंदर रहने वाले लोग होते हैं उनकी अलग अलग जरूरियात होती हैं, भाई बहन होते हैं एक ही माँ बाप की औलादें होती हैं, लेकिन भाई की जरूरियात अलग होती हैं, बहन की जरूरियात अलग होती हैं। तो ये तो हमने बंदों की तरफ से बात करी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अगर हम बात करें तो जो भी जिसकी भी जरूरत है अल्लाह नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा उस बात को? अल्लाह ताला खालिक है, ठीक है ना? अल्लाह ताला मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, अल्लाह ताला तो क्रिएटर है। मैन्युफैक्चरर तो उसको कहते हैं जो कि जो पहले से मौजूद चीजें होती है ना उनको जोड़ जाड़ करके कुछ बना देता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना कहते हैं। लेकिन क्रिएशन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अदम से वजूद में लेकर के आना, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेकर के आना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, ठीक है? तो अगर अल्लाह को जरूरियात का नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। तो अल्लाह ताला जो है ना, फिर जो काम भी करते हैं ना, अल्लाह का उसूल ये है कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरूरियात का ठेका उठाया, ठेका लिया हुआ है। ठीक है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारी जरूरत क्या है क्या नहीं है। बहुत कम लोगों को जिनको अल्लाह ताला इल्म और हिकमत अता फरमाते हैं, वो थोड़ा जरूरियात का सही इदराक कर पाते हैं, अदरवाइज तो किसी को पता ही नहीं होता, बस रोते धोते रहते हैं हम लोग, मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, मेरी जरूरत पूरी नहीं। अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता भी है तुम्हारी जरूरत है क्या? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी क्या जरूरत है, और तुम रोती धोती फिर रही हो हर वक्त, मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही। अल्लाह को नहीं पता तुम्हारी क्या जरूरत है, अल्लाह को नहीं पता तुम्हारी क्या जरूरत है। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला जिस बात को समझ रहे हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी जरूरत ही कोई नहीं है तो वो क्यों पूरा करें उस बात को। ठीक है ना, तो हमें रोना धोना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना जरूर चाहिए। अल्लाह से मांगने की कोई उसमें कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप अल्लाह से जो है वो मांगे नहीं कि अल्लाह आप मुझे ये अता फरमा दें वो अता फरमा दें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा ना, अगर नहीं मिल रहा तो फिर ये भी साथ साथ जाने कि यकीनन इस वक्त मेरी जरूरत ये होगी नहीं, इसी वजह से अल्लाह मुझे नहीं दे रहे हैं, लेकिन मांगना फिर भी क्यों मांगते हैं ये जरा आप बता दें अगर। लेकिन मांगे फिर भी, ये भी साथ साथ जहन में हो, और ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है ये ना, कि जहन में भी हो कि इस वक्त मेरी जरूरत नहीं होगी जब भी अल्लाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन मांगे भी फिर भी मांगे, तो ऐसा क्यों है कि फिर भी मांगे। जिस बात को, जिस बंदे को ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह नहीं दे रहे क्योंकि मेरी इस वक्त जरूरत नहीं है, अब वो क्यों मांगे अल्लाह ताला से, ये आप बता दें। जी जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, क्योंकि अल्लाह को मांगना पसंद है, अल्लाह से मांगना अल्लाह को पसंद है। ठीक है, क्योंकि, और दूसरा भी बड़ा अच्छा जवाब है कि इसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में देते हैं, मांगने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं, मांगना बंदगी है। माशाल्लाह, ये तो आप लोगों ने सबने पीएचडी किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सबके बड़े अच्छे अच्छे जवाब हैं, तो ये इजहार बंदगी है। दुआ तीन तरह से कबूल होती है, ये भी माशाल्लाह रट गए आप तो, नहीं तो आखिरत में जरूर मिलेगी। तो भाई जो मांगना है ना अल्लाह अल्लाह ताला से, ये इबादत है। अद्दुआ मुखल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, दोनों हदीस मौजूद है। तो भाई हमने तो, हमें तो क्यों पैदा किया गया, बंदगी के लिए पैदा किया गया, इबादत के लिए पैदा किया गया, तो मांगना जो है वो दुआ, ये तो बंदगी है ना। क्या है, अस्तजिब लकुम, राइट, अस्तजिब लकुम क्या है वो, उदउकुम, उदउनी अस्तजिब लकुम। ठीक है, उदउनी, तुम दुआ करो मुझसे, मैं तुम्हें जो है वो जवाब दूंगा, यहां दूंगा, फौरन दूंगा, थोड़ा सा डिले के साथ दूंगा, या आखिरत में दूंगा। एनीवे, तो बात समझना कि मेरी जरूरत नहीं है इस वजह से अल्लाह ताला मुझे नहीं दे रहे हैं, इसको अल्लाह ताला से राजी रहना कहलाता, कहते हैं अल्लाह से राजी रहना। लेकिन दुआ मांगना क्योंकि बंदगी है, और हमें इस दुनिया में बंदगी के लिए पैदा किया गया। ठीक है, तो फरिश्ते अगर जमीन में होते, अगर उनकी जरूरत होती तो अल्लाह ताला बेशक फरिश्ते भेजते, लेकिन जरूरत ही कोई नहीं तो क्यों भेजे भाई, तुम्हारे कहने के ऊपर खामखा जो अल्लाह ताला रसूल भेजना शुरू कर दें। अच्छा, आगे की आयत भी शुरू कर देते हैं आज। औजुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, कुल कफा बिल्लाहि शहीदं बैनी व बैनकुम इन्नहु काना बिइबादिही खबीरं बसीरा। कह दीजिए, नबी अलैहिस्सलाम से खिताब करके अल्लाह ताला फरमा रहे, कह दीजिए कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह ताला काफी है शहीद। यहाँ पे शहीद मैदानी जंग वाला शहीद नहीं, बल्कि शहादत देने वाला, साबित करने वाला। शहादत देने वाला क्या करता है कि जब कोई मुकदमा होता है ना, तो एक जो है वो गवाह को बुलाते हैं, तो वो गवाह जब गवाही दे देते हैं ना, तो फिर केस साबित हो जाता है, गवाही से मुकदमा साबित हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी शहीद कहा जाता है, शहादत देने वाला, गवाही देने वाला, उससे हक हक साबित हो जाता है उससे। ठीक है, तो अल्लाह ताला हक साबित करने वाला काफी है। बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान, बैन का लफ्ज भी दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, और बैनी मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, मेरे और तुम्हारे दरमियान, ये मुहावरतन अल्फाज मुहावरे में क्या मसला होता है कि लफ्जी तर्जुमा समझ में नहीं आता, लेकिन बा मुहावरा तर्जुमा पता होता है, उसका मतलब समझ में आ जाता है। उसी तरह से बईनी मेरे दरमियान, क्या मतलब मेरे दरमियान, मेरे पेट के अंदर। वह बईनकुम तुम्हारे दरमियान, यानी तुम्हारे पेट के अंदर, क्या मतलब, नहीं ये मुहावरा है। तो लफ्जी तर्जुमा इसका समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ज्वाइन करके पूरा बोला जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी, तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला काफी है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो है अपने इबाद के लिए, ठीक है, अपने इबाद के साथ या अपने इबाद के लिए खबीर, यानी सारी खबरें रखने वाला, बसीर सब कुछ देखने वाला, ठीक है, उसको इल्म भी सब कुछ है और उसको वो देखता भी रहता है सब कुछ। ठीक है, खबीर का मतलब क्या होता है कि उसको खबरें पहुंचती रहती हैं लेकिन देखता नहीं है, एक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहा है, हाँ उस तक न्यूज पहुंच रही है या उसको पहले से न्यूज का पता है, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ खबीर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बसीर भी है, एक्टिवली इन्वॉल्व भी है, मुस्तकिल देख रहे हैं। ठीक है, बसारत के लफ्ज से बसीर, सही है। तो जैसे पिछले जुम्मे के मजलिस में बात हो रही थी कि अल्लाह ताला बैच प्रोसेसिंग नहीं करते कि शुरू में बस भेज दिया पर आखिर में निपटेंगे, दरमियान में भी इन्वॉल्व है मुस्तकिल। ठीक है, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, वमन, और जिसको, यहाँ पे जिसको से तर्जुमा करेंगे मन का, यहदिल्लाहु अल्लाह ताला हिदायत दिखलाए, अल्लाह ताला हिदायत दे दे, फहुवल मुहतद वही है हिदायत पाने वाला, इहतदा यहतदी, ठीक है, मुहतदुन, मुहतदुन इसम मफ़ूल का सीगा हुआ है इसका, यानी जिसको हिदायत मिल गई, तो जिसको अल्लाह ने हिदायत दी उसी को हिदायत मिल गई। ठीक है, वमन युज़लिल, यानी अल्लाह के अलावा किसी ने किसी को हिदायत दे दी, कोई पता नहीं कि वो वाकई हिदायत याफ्ता है या वो गुमराह कर दिया गया है, रास्ते से किसी और रास्ते पे चला दिया गया है, लेकिन जिसको अल्लाह ने हिदायत दी, चाहे वो बिला वास्ता हिदायत दी, यानी डायरेक्टली अल्लाह ताला ने उसको इल्हाम फरमा दिया कि भाई ये सीधा रास्ता है, तो फिर वो सीधे रास्ते पर ही है, और अगर बिल वास्ता यानी किसी वास्ते से उसको हिदायत का रास्ता दिखला दिया तो वो भी हिदायत वाला है। ठीक है, फहुवल मुहतद, वमन युज़लिल, और जिसको वो गुमराह कर दे, वलालत, वलाल, ठीक है, गुमराही, जिसको वो गुमराह कर दे, फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी, बस नहीं तू पाएगा उनके लिए औलिया, औलिया वली की जमा, यानी मददगार, ठीक है, रफीक, ठीक है, तो जिसको वो गुमराह कर दे बस आप नहीं पाएंगे उनके लिए उसके अलावा, मिन दूनी, अल्लाह के अलावा कोई मददगार, कोई रफीक, कोई हेल्पर, ठीक है, कोई उसकी मदद, यानी जो अल्लाह ताला अगर किसी के खिलाफ हो जाए ना, अब कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई उसको सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। हिदायत मिलने की अलामात इन्होंने लिखा है, हिदायत मिलने की अलामात क्या होती हैं, हिदायत मिलने की बहुत अलामात वगैरह बयान की जाती हैं, और कहा जा सकता है कि हाँ भाई हर एक की अपनी अपनी जो है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो फिर व्हाट इज द फाइनल क्या कहते हैं, फाइनल वर्ड क्या है इसके ऊपर कि हिदायत मिल गई। ठीक है, तो फाइनल वर्ड क्या होता है, फाइनल वर्ड ये होता है कि इंसान अपने बनाने वाले को, ठीक है, जिस जिसका इदराक, जिसकी पहचान हर इंसान की फितरत में गूंधी हुई है, हर इंसान की फितरत में गूंधी हुई है, यानी हर इंसान को अल्लाह का पता है, चाहे जो भी हो, जहां भी रहता हो, जिस जमाने में भी रहता हो, उसको खालिक का पता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको पैदा इस फितरत के साथ किया है, खालिक की पहचान की फितरत के साथ। ठीक है, तो वो अपने खालिक को माने, ठीक है, उसको खालिक माने, ठीक है, उसको खालिक माने, उसको अपना रब माने, ठीक है, खालिक भी माने और खालिक के साथ साथ उसको अपना रब भी माने, और अपने आप को मोहताज माने, अपने आप को ऐसा मान ले कि मुझे मेरे रब की जरूरत है, मेरा रब जो कुछ मेरे पास है वो मेरा रब ही मुझे दे रहा है, ठीक है, और जो कुछ मुझे मिलेगा वो मेरे रब से ही मुझे मिलेगा, ठीक है, और मुझे करना क्या है अब वो मुझे ये मालूम करना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरे रब मुझसे क्या चाहता है। ये जो एहसास है ना, ये तीन एहसासात, रब की मौजूदगी कि मेरा एक रब है जिसने मुझे तख्लीक किया है, मेरा रब है जो मुझे दे रहा है जो कुछ मेरे पास है, ठीक है, और तीसरी बात कि मुझे ये मालूम हो करने की जरूरत है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, ठीक है ना। ये तीन एहसासात किसी इंसान के अंदर अगर आ जाए, ये हिदायत मिलने की निशानी, हिदायत मिलने की निशानी, ये अलामात है हिदायत मिलने की, ठीक है। देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे आलमुल अरवाह में सवाल किया ना, आलमुल अरवाह में यानी इस दुनिया में आने से पहले रूहों वाले आलम के अंदर, जब अल्लाह ताला ने सारी रूहों को छोटे छोटे से जिस्म अता करके उनको पैदा फरमा दिया आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में से, ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे क्या चीज पूछी, अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या कलाम किया, कोई तफसील नहीं है उसके अंदर, सिर्फ एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज, अलस्तु बिरब्बिको, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, ठीक है। तो ये जो रब वाला जो क्वेश्चन था ना, ये सब कुछ कवर कर लेता है, ये सब कुछ कवर, ऑल एनकम्पसिंग है ये। तो उस वक्त तो इकरार सबने कर लिया, ठीक है ना, नबियों ने भी इनकार इकरार किया और शैतानों ने भी इकरार किया, फिरौन, हामान, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, सबने इकरार किया वहां पे, बला यार, ठीक है ना। लेकिन हिदायत पाने वाले कौन हुए जिन्होंने इस इकरार के मुताबिक जिंदगी भी गुजारी, कौन से वाले इकरार, रब, कि आप ही हमारे रब हैं। तो जिसने भी इस इकरार के मुताबिक यानी रब वाले इकरार के मुताबिक जिंदगी गुजार ली, वो क्या है, हिदायत पर है, ठीक है ना। तो हिदायत की यही अलामत है, बाकी सारी तफसीलात, बाकी सारी डिटेल्स है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ये करता है, वो करता है, जुल्म नहीं करता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, ये सब तफसीलात है, ठीक है। तो अब आपने एक ऐसा सवाल किया जिसका कि जाहिर है हम सब तफसीलात तो इधर बताने से रहे, तो समंदर को कूजे में बंद कर देने वाला जवाब यही हदीस मुबारक और कुरान शरीफ से हमें मिलता है कि रब, ठीक है। अच्छा, तो वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युदलिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी वनहशुरुहुम यौमल कियामति अला वुजूहिहिम उमयन व बुकमन व सुम, और हम उनको उठाएंगे, उनका हशर करेंगे, उर्दू में हम कहते हैं हशर नशर करेंगे, ठीक है, लेकिन असल में हशर का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, उठाना सबको कयामत के दिन। यानी अब ये बात हो रही है ना, ये हिदायत वाले की तफसील बयान नहीं हो रही, बल्कि जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसके साथ क्या होगा कयामत के दिन, कि हम उनको उनके चेहरों के ऊपर उठाएंगे कयामत के दिन, उमियन उठाएंगे अंधे, बुकमन उठाएंगे गूंगे, और सुमन उठाएंगे बहरे। यानी ये जो तीन सबसे बुनियादी नेमतें हमारी हैं ना, ये बुनियादी नेमतें उनके पास नहीं होंगी, हाँ चेहरा होगा उनके पास, क्योंकि चेहरे के ऊपर उठाएंगे ना तो चेहरा होगा, सही है, चेहरे में हो सकता है आंखों की जगह पे आंखें लगी हुई भी हों, लेकिन देखने की सलाहियत नहीं होंगी, चेहरे चेहरा बनता ही इन चीजों से है ना, चेहरा सिर्फ चीक्स का नाम के थोड़ी है, कल्ले, गाल, पेशानी, बल्कि चेहरे का उज है ना ये, आंखें, कान और नाक और जुबान, ठीक है, तो चेहरा होगा तो जुबान भी होगी, आंखें भी होंगी, कान भी होंगे, ठीक है ना, और चीक्स भी होंगे और फोरहेड भी होगा और हेड भी होगा, लेकिन फंक्शन नहीं कर रहे होंगे, अपना काम नहीं अदा कर रहे होंगे, देखने का काम, सुनने का काम और बोलने का काम, ये सलाहियत अल्लाह ताला वापस ले लेंगे। मतवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना दोजख में होगा। ठीक है, तो पहले तो उठाए जाएंगे ना मुंह के बल, फिर उनको वहां मुंह के बल ही घसीटते घसीटते हुए बिलाखिर ठिकाना का क्या होगा उनका, जहन्नुम। कुल्लमा खबत जिदनाहुम सगीरा, ठीक है, के कुल्लमा, जब भी खबत वो बुझने बुझने लगेगी, यानी यहाँ पर तफसीर तफसील नहीं है कि क्या चीज बुझने लगेगी, लेकिन अगले लफ्ज से पता चल जाता है कि हम भड़का देंगे उसको, तो अब भड़काना यानी सगीर भड़काना, इससे पता चल जाता है कि आग ही है, क्योंकि आग ही भड़काई जाती है, और आग ही जो है ना वो खबत, खबत का मतलब कि वो बुझने लगेगी, इसम है अरबी जुबान में, एक ये इसम चाहते थे खबत, नहीं सईर, सईर है वो, सॉरी इसम चाहते तो खबत तो फेल है। अच्छा, तो जब भी वो बुझने लगेगी तो हम उसको भड़का देंगे उनके ऊपर। ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ, ये उनकी सजा है, بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, ये उनकी जजा है, यानी ये उनका रिकम्पेंस है, ये उनका रिवॉर्ड है, या ये उनको जो है वो पेमेंट हो रही है। بِأَنَّهُمْ इस वास्ते के कफरू भी आयातिना, उन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया। निशानियां क्या हैं, दरख्त, फूल पत्ते, बादल, जमीन, पहाड़, ये वाली निशानियां, इनका इनकार किया। क्या उन्होंने कहा, क्या ये बादल नहीं होते, हालांकि बादल होते हैं, उन्होंने कहा नहीं बादल नहीं होते, तो निशानी का इनकार कर दिया। पहाड़ होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पहाड़ नहीं होते, तो वो पहाड़ का वो निशानी का इनकार करने वाले बन गए। नहीं, यहां पर वो वाली निशानियां मुराद नहीं है, बल्कि कौन सी निशानियां मुराद हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकामात दिए थे, अल्लाह ताला ने अहकामात दिए थे कि ऐसे करो और ऐसे ना करो, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। वो पहाड़ों और बादलों और दरख्तों का इनकार नहीं करते थे कि नहीं ये तो है ही नहीं, वो कहते थे अहकामात नहीं है, कोई हुक्म नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से, हमारी मर्जी है, हम जैसे चाहें करें, अपने रब को जैसे चाहें राजी करना चाहें हम अपनी मर्जी से राजी कर लेंगे, राइट, हमारे रब ने हमारे ऊपर कोई पाबंदियां, कोई अहकामात, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बनाए। ये वजह है कि जिसकी वजह से वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरों को इल्जाम देने के बजाय अपने आप पे भी जरा तवज्जो कर लें कि हम क्या करते हैं, अल्लाह के हुक्मों का इनकार कर, नहीं ये तो हुक्म ही नहीं है, खवातीन की क्लास है तो फिर वहां पे तो जाहिर है पर्दे की बात आएगी, नहीं ये तो हुक्म ही नहीं है, राइट, ये तो मौलवियों ने बनाया हुआ है, या आजकल के मौलवी तो वैसे भी थोड़े से कुछ और ही चल रहा है, कुछ सबका सबकी बात, कुछ की बात हो रही है, ठीक है ना, पर्दा शर्दा जो है वो काफी रिलैक्स हो गया है अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के नजदीक। अल्लाह का ये अहकाम की हिफाजत तो अल्लाह ने अपने जिम्मे ली हुई है, हमेशा ऐसे लोग पैदा फरमा देंगे जो कि अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करेंगे। तो बहरहाल जो उलमाए कराम मशाइख उजाम पर्दे के बारे में बताते हैं, नहीं ये तो उन्होंने बनाया हुआ है, ये असल में कोई थोड़ी है, कुरान मजीद क्या है, तो नहीं वो तो अजवाज मुतहरात के लिए थी, हमारे लिए कोई थोड़ी है, या अगर है भी तो हमारे लिए तो सिर्फ आंखों का पर्दा है, नहीं बाकी जो पर्दा हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आंखों के ऊपर आप टेप लगा के जाया करें, फिर आंखों का पर्दा है तो आंखों पर टेप लगा के जाया करें, बाकी चेहरा खुला रखें आप बेशक, है आंखों के सामने जो है वो नकाब लगा लिया करें, आंखों का पर्दा है, यानी बेवकूफ़ी की वही बेवकूफ़ी की बातें, जिस तरह वो सर न पैर की बातें कुफारे मक्का किया करते थे, उसी तरह न सर न पैर की बातें जो है वो आज के जो इनकारी होते हैं वो कर रहे होते हैं, आंखों का पर्दा। ठीक है, तो भाई अल्लाह के हुक्मों का इनकार करने की वजह से जहन्नुम, और जहन्नुम में क्या होगा, सर के बल अंधे, गूंगे और बहरे, نعم سب کی فاضل فرمائے ایسے انجام سے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا. اور وہ بولے کہ أَإِذَا كُنَّا کہ جب ہم کیا جب ہم ہو جائیں گے, کُنَّا ہم ہو جائیں گے, عِظَامًا ہڈیاں, وَرُفَاتًا چورا چورا, یعنی ہڈی بھی خالی نہیں, ہڈی بھی ایسی جس کا کہ فاسفورس بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, چورا چورا بالکل پاؤڈر ہو جائے. انا لمبعوثون خلقا جدیدا, کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے ایک نئی زندگی کے اندر, ایک نئی تخلیق کے طور پر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اولم یارو, کیا نہیں دیکھتے وہ, کیا نہیں دیکھتے وہ, وہ کافر جو انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, الذی وہی تو ہے, خلق السماوات والارض کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا, قادر علی ان یخلق مثلہم کہ وہ بنا سکتا ہے, کہ وہ بنا سکتا ہے یعنی ایسوں کو, مثلہم ان جیسی اور چیزوں کو بھی, جس طرح آسمانوں اور زمین کو بنایا وہ ان جیسی اور چیزوں کو بھی بنا سکتا ہے. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ, اور اس نے بنایا ہے, مقرر کیا ہے ان کے لیے اجل. اجل کیا کہتے ہیں؟ ایک معیاد معین, ایک پری ڈیٹرمنڈ ٹائم پیریڈ, ٹھیک ہے, اجل. جعل لہم اجل, اس نے مقرر کر دیا ہے یا بنا دیا ہے ایک پری ڈیٹرمنڈ ٹائم, لا ریب فیہ, کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا, بس یہ جو ظالم لوگ ہیں نا, یعنی جو حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, جو حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, where they were due, ٹھیک ہے نا, وہ حقوق والدین کے اندر پڑا ہے نا ہم نے, حقوق ادا کر, ٹھیک ہے, تو یہ جو حقوق ادا نہیں کرتے ہیں نا, تو یہ لوگ جو ہے نا انکار کرتے ہیں. ابا, ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, ڈینائی کر دینا, ریفیوز کر دینا, ٹھیک ہے, تو یہ ظالم ریفیوز کر دیتے ہیں, اللہ کفورا سوائے کفر کے. کیا مطلب ترجمہ؟ ویسے تو لکھا بے انصافوں سے بے ن... یعنی سو نہیں رہا جاتا بے انصافوں سے بے ناشکری کیے ہوئے. ٹھیک ہے, کیا مطلب بے ناشکری؟ یعنی ایک ایک پہلی ناشکری نیگیٹو ہے, پھر اس کے اوپر بے لگا دیا تو نیگیٹو کی نیگیشن, ٹھیک ہے, نیگیٹو کی نیگیشن, تو یہ تو ہمارے تو دماغوں میں مشکل سے آئے گی یہ والی بات. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم اپنے ماحول کے حساب سے اگر ہم بات کریں, اپنے اپنے احوال کے حساب سے بات کریں, تو کیا ہوگا کہ یہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں سوائے کفر کے, یعنی کفر کی باتوں کا انکار نہیں کرتے. بھائی اگر آپ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ شکر کی باتوں کا بھی انکار کریں اور آپ کفر کی باتوں کا بھی انکار کریں, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ بیگم صاحبہ جو ہیں تو انہوں نے تو شوہر کی ہر بات کا انکار کرنا تھا, ٹھیک ہے نا, شوہر جو بات کہے انہوں نے الٹی بات کرنی تھی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا وہ سیلاب آ گیا گاؤں کے اندر, تو سیلاب کے اندر جو ہے وہ ہر چیز بہنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, تو پانی کا ریلا آیا اور ریلے میں جو ہے نا وہ پھر پانی جب آتا ہے تو پھر وہ انسانوں کو بھی بہا کے لے کے جاتا ہے. تو یہ جو شوہر صاحب تھے نا, تو انہوں نے, اچھا بیگم صاحبہ نے شوہر صاحبہ کو, شوہر صاحب کو پکڑ لیا بڑے ٹائٹ سے, اور شوہر صاحب جو ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر کے کھڑے ہوئے تھے, کسی اور چیز کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے تھے, بیگم صاحبہ جو ہیں وہ شوہر صاحب کو پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی. تو اب جو ہے نا شوہر صاحب نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ مجھے ٹائٹ سے پکڑو, مجھے چھوڑنا مت, لیکن ان کی تو عادت تھی شوہر جو بات بولے گا اس کا اپوزٹ کرنا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ میں شوہر کی بات کیسے مانوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, انہوں نے چھوڑ دیا شوہر کو, ٹھیک ہے. جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پانی کا ریلا ان کو لے گیا, ٹھیک ہے نا. اب جس طرف ریلا جا رہا تھا نا, شوہر صاحب جو ہیں انہوں نے دوسری طرف भागना शुरू कर दिया, बेगम बेगम तुम कहाँ हो, बेगम बेगम तुम कहाँ हो, ठीक है ना, रेला जिस तरफ जा रहा है उसकी दूसरी तरफ भागना है। तो लोगों ने कहा कि तुम भाई वो बही होगी ना, तो उस तरफ बही होगी, तुम इस तरफ क्यों भाग रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई वो असल में हर चीज में मुखालफत किया करती थी, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि वो उधर बहने की बजाय इधर बह रही होगी, तो इस वजह से मैं इधर भाग रहा हूँ। असल में वो चाहते थे कि वो मर जाए, जा करके खत्म हो जाए, जिंदा ना बचे, ठीक है। तो आप जब हर चीज का इनकार करते हैं, जैसे राउंड बेगम साहिबा की तरह जब हर चीज का इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप कुफर की बातों का भी इनकार करें, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ऐसा ये नहीं करते, ये सिर्फ हक बातों का इनकार करते हैं, ये कुफर की बातों का इनकार नहीं करते। उनको तो बड़े अच्छे से जो है वो गले लगा लेते हैं, इनके सामने जो है ना वो नाच गाना म्यूजिक या उल्टी सीधी खराफात और बेकार और टाइम वेस्टर्स और जो भी नुकसानदेह चीजें हैं ना, इनके सामने लेकर के आओ, ये बड़े खुश होंगे उसके ऊपर। और बड़ा जो है ना, हाँ भाई ये जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए है, तो और लेकर के आए इस तरह की बातों को, और हमें करना चाहिए सारे काम है, उन बातों का इनकार नहीं करते, ठीक है। तो ये जालिमों के साथ जो है ना, फिर क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं ये, क्योंकि अल्लाह ताला इनकी अकल को जो है ना बिल्कुल मार देते हैं, ये सजा होती है, ठीक है। ये फिर अपने नुकसान वाली चीजों को कबूल कर लेते हैं और जो फायदे वाली चीजें थी उनका इनकार करते हैं। तो फअबग़ालिमूना इल्ला कुफूरा, ठीक है। कुल लो अंतुम तमलिकून खजाइना रहमत रब्बी, आप कह दीजिए इनसे, लो अंतुम, अगर तुम तमलिकून, तुम्हें मालिक बना दिया जाए, तुम्हें तमलीक यानी तुम्हें मालिक बना दिया जाए, ठीक है, खजाइना रहमत रब्बी, मेरे रब के खजानों, मेरे रब की रहमत के खजानों का तुम्हें मालिक बना दिया जाए, इजन तब क्या होगा, ला अमसकतुम, तब तुम रोकोगे, ठीक है, तुम रोक लोगे, खशियत अल इन्फाक, तुम इन खजानों को खर्च हो जाने के खौफ से, इन्फाक का मतलब क्या होता है, खर्च करना, खशियता खौफ यानी ये खर्च हो जाएंगे, इस खौफ से तुम उनको रोक लेते, ठीक है। इमसाक ये इन्फाक का ऑपोजिट, रोक लेना, अमसा का यौन से को इमसाकन, ठीक है, तुम ना खर्च हो जाने के खौफ से उन खदानों को रोक लेते, यानी किसी को, यानी किसी को लेने ना देते उन खदानों को। वकान अल इंसान कतूरा, और इंसान है दिल का तंग, कतूर, ठीक है, यानी तंग दिल है, ये बड़ा। कंजूस जिसको कहते हैं, ठीक है।
जी
तो अच्छा, एक मिनट, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास की मैं आपको कॉल करता हूँ। अच्छा, ये तो तर्जुमा हम दोनों मुकम्मल हो गया, किसी ने कोई सवाल लिखा था वो मुझे एक मिनट नजर नहीं आ रहा। हाँ, दिस मीन्स दीनदारों का इनकार करते हैं और फिस्क फुजूर वालों को कुछ नहीं कहते। दीनदारों का इनकार करते हैं क्योंकि दीनदार जो है ना वो नेकी की बातें करते हैं, ठीक है, सही मानों में जो दीनदार होते हैं वो नेकी की बात करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, तो वो उसका इनकार करते हैं, और जो फिस्क फुजूर वाले होते हैं उनका इनकार नहीं करते। सीधी सी बात। कोई और सवाल या कोई और कमेंट है इस इन आयात के तर्जुमे के मुताल क्लास खत्म होने से पहले? ठीक है, इंशाल्लाह फिर बाकी खुलासा तफसीर और मालूम मसाइल अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।